दीवा आर्यांश के साथ अपने घर पर आई हुई थी। इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि प्रार्थना और नवीन को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था। हालांकि आर्यांश ने उसे यही कहा था कि वो सब कुछ संभाल देगा, पर फिर भी दीवा को तसल्ली नहीं हो रही थी। उसे यही लग रहा था कि अब प्रार्थना और नवीन उसे आर्यांश से अलग कर देंगे। वहीं प्रार्थना और नवीन को उनके रिश्ते के बारे में एक गुमनाम ईमेल से पता चला था जो कि व्यांश ने भेजा था। पहले तो उन्हें जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए थे, लेकिन बाद में प्रार्थना से डिस्कस करने पर उन्होंने आर्यांश को बुलाकर परखना सही समझा। आर्यांश की लोगों के बीच इमेज एक प्लेबॉय के तौर पर थी, ऊपर से उन दोनों परिवारों की हैसियत में भी जमीन आसमान का फर्क था। बातें करते हुए प्रार्थना ने कहा, अच्छा अभी भी कुछ डिश बनाना बाकी है दीवा, तुम मेरे साथ आओ, थोड़ी हेल्प कर दो। प्रार्थना अजीब नज़रों से आर्यांश को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी उसे कहीं देखा था, मैगजीन्स में नहीं बल्कि अपनी आंखों के सामने कहीं देखा था। ठीक है, दीवा ने जवाब दिया। उसे राहत महसूस हो रही थी कि कम से कम प्रार्थना उससे बात तो कर रही है। वहीं लिविंग रूम में बस नवीन और आर्यांशी रह गए थे। इनाया अंदर के कमरे में स्नैक्स खोल रही थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि सारे स्नैक्स प्रीमियम और इम्पोर्टेड थे। अमीर जीजा होना भी अपने आप में अच्छा होता है, वो आपके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आते हैं, इनाया ने खुश होकर कहा। वहीं लिविंग रूम में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बातचीत की शुरुआत करते हुए नवीन ने पूछा, मिस्टर कपून, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अंकल, सबसे पहले तो आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, हमारे बीच एक रिश्ता जुड़ने वाला है तो ये फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद हैं, खासकर इंडोर गेम्स। हाँ, पर चेस खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आर्यांश काफ़ी अदब से जवाब दे रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी स्टडीज़ किसी VIP स्कूल में हुई होगी। तो चेस खेलने में इंटरेस्ट है, अच्छे से खेलना आता है? नवीन ने तुरंत पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत, उसने काफ़ी विनम्रता से जवाब दिया। नवीन ने तुरंत इनाया को बुलाकर चेस बोर्ड मंगवाया। नवीन को हमेशा से शतरंज खेलना पसंद था, लेकिन प्रार्थना और इनाया दोनों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। दीवा पहले उनके साथ खेलती थी, लेकिन अब वो भी काम के चलते बाहर रह रही थी। ऐसा नहीं था कि आर्यांश को शतरंज खेलने नहीं आता था, उसने काफ़ी कॉम्पिटिशन भी जीते थे, लेकिन आज नवीन के साथ खेलते हुए उसे थोड़ी नर्वसनेस महसूस हो रही थी। सामने उसके होने वाले ससुर बैठे हुए थे, वो हार नहीं सकता था, और उन्हें हराता तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता। आर्यांश थोड़ा कश्मकश की स्थिति में आ गया था। वहीं किचन के अंदर दीवा कुछ सब्जियां कट रही थी, उनके बीच भी एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक प्रार्थना ने पूछा, तुम दोनों कब से साथ में हो? उसकी आवाज़ में सख्ती थी। लगभग 2.5 महीने हुए हैं, दीवा ने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं क्योंकि वो जानती थी कि 2.5 महीने पहले दीवा तो रक्षित के साथ थी, फिर बीच में आर्यांश कैसे आ सकता था। अचानक प्रार्थना को कुछ समझ में आया, उसने जल्दी से दीवा का हाथ पकड़कर हैरानी भरे लहजे में पूछा, दीवा सच बताओ, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? दीवा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, वो उनकी पहली मुलाकात का सच प्रार्थना को कैसे बता सकती थी, उनका रिश्ता सम्मानजनक नहीं था। मॉम, एक्चुअली वो हमारी मुलाकात एक फ्रेंड के जरिए हुई थी, दीवा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। बकवास, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हें यहाँ आए हुए टाइम ही कितना हुआ है और तुम कह रही हो कि तुम्हारी मुलाकात किसी दोस्त ने करवाई है? प्रार्थना ने तुरंत उसे पकड़ लिया था। हालांकि वो दीवा से गुस्सा नहीं थी बल्कि उसे दीवा की फिक्र हो रही थी। सबको यही लगता था कि आर्यांश जैसे अमीर खानदान के लड़के लड़कियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते थे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो और एक बार फिर से उसका दिल टूटे। मॉम, कभी फ्री होकर बताऊंगी, अभी आप चेक कीजिए, खाना जल रहा है और बाहर वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, दीवा ने तुरंत ही बात को बदल दिया था। दीवा जानती थी कि वो ज्यादा देर तक प्रार्थना के सामने झूठ नहीं बोल पाएगी, वो उसका सच तुरंत ही पकड़ लेती। तो वहीं प्रार्थना को भी अफसोस हो रहा था, उसका और दीवा का रिश्ता ज्यादा फ्रेंडली नहीं रहा था, वो हमेशा से एक सख्त मां रही थी। अगर उनका रिश्ता दोस्तों वाला रहता तो शायद उसे पहले से ही आर्यांश के बारे में पता होता। वहीं प्रार्थना जल्दी जल्दी खाना पलटते हुए अपनी बेपरवाही पर खुद को कोस रही थी। उन्होंने हमेशा दीवा को एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की थी। जब वो पहले पियानिस्ट बनना चाहती थी तो उसे महंगे पियानो क्लासेस में भेजा गया, और बाद में जब उसने बाहर पढ़ने और डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तो उसका प्रवेश एडमिशन लंदन की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में करवाया गया था। हर माँ की तरह प्रार्थना यही चाहती थी कि उसकी बेटी को अच्छा घर मिले, लेकिन उसने खुद ही अपने लिए अच्छा लड़का ढूंढ लिया था। फिर भी प्रार्थना को चिंता हो रही थी, अमीर खानदान के लड़के जैसे दिखते थे वो वैसे नहीं होते थे, ऊपर से कपूर फैमिली ऐसी थी कि उनकी हर एक खबर न्यूज़ में रहती थी, दीवा जैसी मासूम लड़की उनके परिवार में एडजस्ट करना सीख नहीं पाती। काम करते हुए अचानक प्रार्थना ने दीवा से पूछा, दीवा, क्या तुम्हें आर्यांश का चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता? हाँ मॉम, थोड़ा जाना पहचाना तो लगता है, दीवा ने जवाब दिया। नहीं दीवा, मैं वैसे नहीं कह रही हूँ जैसे तुम समझ रही हो, ऐसा लगता है जैसे मैं पहले उस लड़के को देख चुकी हूँ, प्रार्थना ने दीवा को समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पा रही थी। दीवा ने भी थोड़ा बेपरवाही से जवाब में कहा, हाँ हो सकता है मॉम, क्योंकि ये आम सी बात है। आर्यांश बिजनेस मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और टीवी इंटरव्यू में आता रहता है। प्रार्थना ने उसकी बात पर सिर हिलाया। पिछले कुछ सालों से उसकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन हाँ उसके दिमाग में ये बात जरूर खरखर गई थी कि वो पहले आर्यांश से कहीं मिल चुकी थी। डिनर के वक्त सब साथ में मुस्कुराते हुए अच्छे से बात कर रहे थे। अब वो आर्यांश के सामने थोड़ा घुल मिल गए थे। सच कहूं तो तुम चेस खेलने में बहुत अच्छे हो आर्यांश, मैं हारते हारते बचा, नवीन ने अपनी जीत की खुशी मनाते हुए कहा। उन्होंने तो साथ में शैंपेन की बोतल तक मंगवा ली थी। या ये कह सकते हैं कि वो आपके सामने जानबूझकर हारा हो, प्रार्थना ने मजाकिया तरीके से कहा। नहीं अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चेस खेलने में बहुत अच्छे हैं, इनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आर्यांश ने विनम्रता से जवाब दिया। वहीं दीवा मुस्कुराते हुए आर्यांश को देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि वो थोड़े ही टाइम में उसके मॉम डैड के साथ घुल मिल गया था और ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे हमेशा से उन्हें जानता हो। शायद यही वजह थी कि लड़कियां आर्यांश को देखकर अट्रैक्ट हो जाती थीं। नवीन आज बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत समय बाद में अच्छी शतरंज की बाजियां खेली और साथ ही उनकी पसंदीदा शराब भी टेबल पर रखी हुई थी। अच्छा तो बताइए पापा कि आज आपने कितने राउंड जीते, दीवा ने पूछा। हमने 3 राउंड गेम के लगाए थे जिसमें से 2 मैंने जीते थे और 1 बराबरी पर टाई हुआ था, नवीन ने खुश होकर बताया। अब तो दीवा को पक्का यकीन हो गया था कि प्रार्थना सच कह रही थी, आर्यांश उनके सामने जानबूझकर हारा था। नवीन को इस तरह खुश देखकर आर्यांश को भी अच्छा लग रहा था। कई बार जीतने के बजाय आप हारो तो वो आपकी बड़ी जीत होती है, आर्यांश का यही मानना था। कुछ ही देर में उनका डिनर हो गया था। आर्यांश और नवीन फिर से लिविंग रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तो इस बीच प्रार्थना ने दीवा को अकेले में बुला लिया था। दीवा आर्यांश को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आर्यांश अगर ज्यादा ड्रिंक कर लेगा तो उसके लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक आर्यांश नशे में नहीं था, बस वो वहां पर बैठकर थोड़ी बहुत पी रहा था।
प्रार्थना के कहने पर दीवा को उसके साथ आना ही पड़ा। अंदर आते ही प्रार्थना ने प्यार से दीवा की तरफ देखा और दुख भरे लहजे में कहा, वो तुमसे शादी तो करेगा ना? हर माँ की तरह प्रार्थना के दिल में भी यही डर था कि कहीं आर्यांश दीवा को बीच राह में ना छोड़ दे। कुछ कह नहीं सकते हैं मॉम, हमने फ्यूचर का सोचा नहीं है, शादी कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हम दोनों साथ में रह रहे हैं, इस बारे में सब कुछ कॉन्फिडेंशियल ही रखा गया है और आगे भी किसी को पता नहीं चलेगा, दीवा ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। जब तक आर्यांश खुद से शादी के लिए नहीं कह देता, दीवा इस बात को लेकर किसी तरह का वादा नहीं कर सकती थी। हालांकि वो खुद उसके साथ शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे किसी भी फैसले में बीच में नहीं बोलना चाहती और तुम दोनों काफी समय टाइम से साथ भी रह रहे हो, लेकिन जब तक शादी ना करो बच्चा पैदा मत करना, प्रार्थना ने झिझकते हुए कहा। वो दोनों इतने समय से साथ रह रहे थे तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशन बन चुका था। दीवा की नज़रें नीची हो गई थीं, उसे समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे, उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। अगर उसका बस चलता तो वो शादी से पहले किसी भी लड़के के इस तरह करीब नहीं जाती, लेकिन उसका और आर्यांश का रिश्ता अलग तरीके से बना था। दीवा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। अगर बिना शादी के तुमने बच्चा पैदा किया तो उसकी फैमिली और बाकी लोग तुम्हें अजीब नज़रों से देखेंगे, या हो सकता है कल को वो तुम्हें छोड़ दे। दूसरी बात, किसी तरह की गलत दवाइयाँ मत लेना, इससे तुम्हारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, तुम डॉक्टर हो, खुद समझ सकती हो इस बात को। एक माँ होने के नाते प्रार्थना उसे हर छोटी जरूरी चीज समझा रही थी ताकि भविष्य में दीवा किसी तरह की मुसीबत में ना आ जाए। प्रार्थना का प्यार देखकर दीवा को समझ में आया कि वो इतनी भी सख्त नहीं थी, पर दीवा खुलकर सच नहीं कह पाई। उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं था, इस वजह से उसे प्रेग्नेंट होने का डर लगता था। दीवा दवाइयाँ भी लेती थी और वो खुलकर आर्यांश को कुछ कह भी नहीं पाती थी। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया था, सोचा था तुम्हारी सगाई के दिन तुम्हें गिफ्ट करूंगी, प्रार्थना ने नम आंखों से कहा और फिर अपनी अलमारी से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। उसमें एक चेन और पेंडेंट था। दीवा समझ सकती थी कि वो किस तरह का पेंडेंट था। उसकी माँ जिस इलाके से बिलोंग रखती थी वहाँ इस तरह का पेंडेंट तभी गिफ्ट किया जाता था जब कोई माँ अपनी बेटी को बुरी नज़र से बचाना चाहती थी। दीवा ने बिना किसी शिकायत के उसे पहन लिया था और फिर वो उसके गले लग गई थी। दीवा की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज ही उसकी शादी हो और उसकी विदाई हो रही हो। पागल लड़की, रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए भी नहीं देख सकती। हाँ, ऑफिस में मैंने तुम पर हाथ उठाया क्योंकि मैं गुस्सा हो गई थी और तुम्हारे लेकर चिंतित थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, शायद मैं एक बहुत बुरी माँ रही हूँ, प्रार्थना ने दीवा से अलग होकर कहा और फिर उसके आंसुओं को साफ करने लगी। मैं आपको कभी गलत नहीं समझूंगी और इतना ही प्यार करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे समझा, दीवा ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा। दीवा को अब थोड़ी राहत महसूस हो रही थी क्योंकि प्रार्थना ने उनके रिश्ते के बारे में ज्यादा नहीं पूछा था। अगर वो सच जान जाती तो शायद वो लोग आर्यांश को खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। थोड़ी देर बात करने के बाद दीवा ने अपना मुंह धोया और बाहर आ गई थी।
रोने की वजह से उसकी आंखें अभी भी हल्की सूजी हुई थी और अब वो घर जाने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बातों ही बातों में आर्यांश काफी ड्रिंक कर चुका था और अब उसे दीवा को भी संभालना था। ओके, तो काफी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि गोयनका फैमिली ने इतनी आसानी से उनकी लिव इन रिलेशनशिप को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको बता दूं कि ये कहानी थोड़ी मॉडर्न पीरियड के हिसाब से लिखी गई है। ऊपर से दीवा पहले से ही आर्यांश के साथ रह रही थी, तो उन्होंने ज्यादा दखल नहीं दिया। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले भाग पर मिलते हैं।